एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के विचारों की गहराइयों में गोता लगा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही अक्सर लोग सोचने लगते हैं, निराशावाद, आर्थर शोबेनावर।
लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी कहानी सिर्फ इतनी ही है? शायद नहीं।
बिल्कुल।
और यही समझने में हमारी मदद करेंगी क्रिस्टोफर जेनावे की किताबें।
क्रिस्टोफर जेनावे, हाँ, वो एक जाने माने ब्रिटिश दार्शनिक है जिन्होंने शोपेनावर को समझने में मतलब दशकों लगाए हैं।
सही। और वो हमें दिखाते हैं कि शोपेनावर की सोच, खासकर उनकी ये इच्छा और दुनिया वाली जो बातें हैं,
अवधारणाएं, हाँ,
वो आज भी हमारे जीवन, हमारे दुखों और हाँ खुशी की तलाश के लिए कितनी जरूरी हो सकती हैं। बिल्कुल। आज की ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, जहां हम सब किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, शायद शोपेनहावर की बातें हमें थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर कर दें।
सही कहा। जनावे का तर्क भी यही है कि शोपेनहावर को बस निराशावादी कहकर खारिज करना तो बहुत आसान है, लेकिन उनके विचारों में से कहीं ज्यादा गहराई है।
तो आज का हमारा मिशन यही है, जिनावे की नजर से शोपेनहावर के दर्शन के उन पहलुओं को खोजना जो शायद हमें चौंका दें या फिर सोचने का कोई नया नजरिया दे दें।
तो चलिए शुरू करते हैं क्रिस्टोफर जेनावे और उनके जरिए आर्थर शोपेनहावर के विचारों की ये पड़ताल।
सबसे पहले क्रिस्टोफर जेनावे के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं और शोपेनहावर के साथ साथ नीचे पर भी उनका काम बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
हाँ, और वो सिर्फ एकेडमिक दुनिया में ही नहीं बल्कि आम पाठकों के लिए भी, जो मुश्किल फिलॉसफी होती है ना, उसको आसान बनाने के लिए जाने जाते हैं।
उनकी खास बात यह भी है, जैसा आपने कहा, कि उन्होंने शोपेनहावर के मूल जर्मन टेक्स्ट्स को बहुत गहराई से पढ़ा है।
बिल्कुल। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि शोपेनहावर ने क्या कहा बल्कि ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों कहा और उसका असली मतलब क्या था। वो जैसे विश्लेषणात्मक और महाद्वीपीय दर्शन के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं।
हाँ, जो शोपेनहावर जैसे विचारक को अलग अलग नजरियों से देखने में मदद करता है।
और जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है वो ये है कि जेनावे शोपेनहावर को इतिहास की धूल फांकने वाला कोई पुराना अप्रासंगिक दार्शनिक नहीं मानते।
नहीं मानते।
वो उन्हें एक ऐसे विचारक के तौर पर देखते हैं जिनकी सवाल, चेतना क्या है, नैतिकता का आधार क्या है, क्या जीवन में दुख जरूरी है, ये सब आज भी उतने ही ताजा और जरूरी हैं।
सही का। यही नजरिया जेनावे को शोपेनहावर समझने के लिए एक बेहतरीन गाइड बनाता है। वो में दिखाते हैं कि शोपेनहावर का लक्ष्य सिर्फ दुनिया को बुरा भला कहना नहीं था।
नहीं, नहीं, बल्कि वास्तविकता की तह तक पहुंचना था, चाहे वो तह कितनी भी असुविधाजनक क्यों न लगे।
तो जेनावे की किताबों का सार क्या है?
वो शोपेनहावर के दर्शन को एक पूरी आपस में जुड़ी हुई विश्व दृष्टि की तरह पेश करते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि शोपेनहावर के मुताबिक दुनिया के दो पहलू हैं। एक तो वो दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं,
जिसे शोपेनहावर दुनिया प्रतिनिधित्व के रूप में, वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं।
बिल्कुल। ये वो दुनिया है जो हमारे दिमाग में बनती है, जैसे हम किसी स्क्रीन पर फिल्म देख रहे हो, कुछ वैसा।
और फिर है उस पर्दे के पीछे की असलियत, ज्यादा गहरी, ज्यादा बुनियादी चीज, दुनिया इच्छा के रूप में, वर्ल्ड एज विल।
हाँ, और यहाँ इच्छा का मतलब हमारी रोजमर्रा की चाहतों से थोड़ा अलग है, ये समझना जरूरी है।
थोड़ा गहरा है, हाँ, ये कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि एक अंधी, अतार्किक, लगातार जोर लगाती हुई ब्रह्मांडीय शक्ति है। सोचिए जैसे कोई नदी जो बिना रुके, बिना किसी मंजिल के बस बहती जा रही है,
हर चीज को अपने साथ बहाते हुए, गुरुत्वाकर्षण से लेकर हमारे अंदर की बेचैनी तक, सब उसी का रूप है।
बिल्कुल। और जेनावे इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि शोपेनहावर के लिए वास्तविकता की असली प्रकृति यही इच्छा है।
और यहीं से दुख की कहानी शुरू होती है ना?
हाँ, क्योंकि ये इच्छा कभी पूरी तरह शांत नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ चाहती रहती है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, या फिर
बोरियत
बोरियत घेर लेती है। इसीलिए शोपेनहावर कहते हैं कि जीवन में दुख तो रहेगा ही, अनिवार्य है।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ये निदान है तो क्या कोई इलाज भी है?
हाँ, जेनावे बताते हैं कि शोपेनहावर में कुछ रास्ते सुझाए हैं। एक है कला और सौंदर्य का अनुभव।
अच्छा, जब हम किसी संगीत में डूब जाते हैं या किसी खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं तो कुछ पल के लिए हम अपनी इच्छाओं की पकड़ से जैसे आज़ाद हो जाते हैं।
एक अस्थायी शांति।
हाँ, एक अस्थायी शांति। और दूसरा ज़्यादा स्थायी रास्ता है करुणा और इच्छाओं से धीरे धीरे दूरी बनाने का।
ओके, तो जेनावे हमें शोपेनहावर की पूरी यात्रा पर ले जाते हैं, दुनिया को समझने से लेकर उसके दुख को स्वीकार करने और शायद शायद उससे पार पाने के तरीकों तक।
चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। जेनावे शुरुआत करते हैं शोपेनहावर के जीवन और उन पर पड़े असर से। कांट, प्लेटो और खासतौर पर भारतीय दर्शन, उपनिषद और बौद्ध धर्म,
हाँ, इनका उन पर गहरा प्रभाव था। ये बात दिलचस्प है कि शोपेनहावर खुद भी निजी जीवन में काफी अकेले और कुछ हद तक निराश रहे, लेकिन जेनावे ये साफ करते हैं कि उनका दर्शन सिर्फ उनकी निजी कड़वाहट का नतीजा नहीं था।
हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। उनका निराशावाद कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उनके तर्कों का, उनके लॉजिक का नतीजा था।
बिल्कुल। और कांट के साथ उनका रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। कांट ने कहा था कि हम चीजों के असली स्वरूप, थिंग इन इटसेल्फ, को नहीं जान सकते, हम सिर्फ उसके बाहरी रूप को जानते हैं जिसे हमारा मन आकार देता है।
हाँ, फिनोमिनॉन।
फिनोमिनॉन, हाँ। शोपेनहावर ने इस पर एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, हाँ, बाहरी दुनिया के असली स्वरूप को हम सीधे नहीं जान सकते, लेकिन
अपने अंदर झांक कर,
हाँ, अपने शरीर के जरिए हम उस मूल शक्ति, उस इच्छा, विल का सीधा अनुभव करते हैं। हमारी भूख, प्यास, भावनाएं, यहाँ तक कि हमारे हाथ पैर का हिलना, ये सब उसी अंदरूनी इच्छा की अभिव्यक्ति हैं।
यहीं से दुनिया के वो दो पहलू सामने आते हैं, बाहरी प्रतिनिधित्व और अंदरूनी असली इच्छा।
तो ये प्रतिनिधित्व वाली दुनिया क्या है? ये वही दुनिया है जिसे हम रोज अनुभव करते हैं, पेड़, पौधे, लोग, घटनाएं।
ये सब हमारे दिमाग की रचना है, जो स्थान, समय और कारण कार्य, कॉजालिटी के चश्मे से दुनिया को देखती है। शोपेनहावर इसे भारतीय दर्शन की तरह माया का पर्दा कहते हैं।
अकेली, अंधी, अतार्किक, ब्रह्मांडीय इच्छा, जेनावे इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई सोचने समझने वाली शक्ति नहीं है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, ये बस है और लगातार सक्रिय है।
जैसे बिजली का करंट जो बस बहता है, हम इसे अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं जब हमें जोर की भूख लगती है या गुस्सा आता है या बस बेचैनी सी महसूस होती है।
हाँ, ये सब उस इच्छा के अलग अलग रूप हैं।
और यहीं से दुख की जड़ जुड़ी है, क्योंकि ये इच्छा हमेशा भूखी रहती है, कभी संतुष्ट नहीं होती।
बिल्कुल। अगर कुछ मिल भी जाए तो वो खुशी पल भर की होती है, फिर या तो नई इच्छा पैदा हो जाती है या फिर खालीपन, जिसे हम बोरियत कहते हैं।
शोपेनहावर कहते हैं कि जीवन एक पेंडुलम की तरह है जो दुख और बोरियत के बीच बस झूलता रहता है।
और एक और दिलचस्प बात है शोपेनहावर का व्यक्तित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपियम इंडिविजुएशनिस, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है सुनने में।
हाँ, थोड़ा कठिन है,
पर इसका मतलब ये है कि स्थान और समय ही वो चीजें हैं जो इस एक अकेली इच्छा को हमें अलग अलग व्यक्तियों और चीजों के रूप में दिखाती हैं।
जैसे समंदर एक है पर लहरें अलग अलग दिखती हैं, कुछ ऐसा।
हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये जो अलगाव का भ्रम है, यही हमारे स्वार्थ और झगड़ों की जड़ है। हम खुद को दूसरों से बिल्कुल अलग मान लेते हैं।
तो सवाल फिर वही उठता है, क्या इस इच्छा और दुख के जाल से निकलने का कोई रास्ता है भी?
है। जेनावे दो मुख्य रास्तों पर रोशनी डालते हैं जो शोपेनहावर ने सुझाए। पहला, सौंदर्य अनुभव, एस्थेटिक्स।
अच्छा, कला वगैरह।
हाँ, जब हम किसी महान कलाकृति, संगीत या प्रकृति की सुंदरता में पूरी तरह खो जाते हैं, तो कुछ पलों के लिए हम अपनी छोटी मोटी इच्छाओं, अपनी मैं और मेरा से ऊपर उठ जाते हैं।
उस पल हम उस चीज को इसलिए नहीं देखते कि वो हमारे किस काम आएगी, बल्कि सिर्फ उसके शुद्ध रूप को देखते हैं।
बिल्कुल। शोपेनहावर इसे इच्छा रहित ज्ञाता, विल लेस सब्जेक्ट ऑफ नोइंग बनना कहते हैं। ये इच्छा की गुलामी से मिली एक छोटी सी छुट्टी है।
और संगीत को वो सबसे ऊंची कला मानते थे।
हाँ, खासकर संगीत को, क्योंकि वो सीधे इच्छा के उतार चढ़ाव, उसकी खुशी और दुख को बिना शब्दों के बयान करता है।
अच्छा,
और दूसरा रास्ता?
दूसरा रास्ता नैतिकता, एथिक्स से जुड़ा है, और इसका आधार है करुणा।
करुणा?
हाँ, और यहाँ करुणा का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं है, बल्कि दूसरे के दुख को गहराई से महसूस करना है, जैसे वो अपना ही दुख हो।
ओह, ये तो गहरा है।
बिल्कुल। शोपेनहावर कहते हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं कि वो जो अलगाव का पर्दा है, माया, वो सिर्फ एक भ्रम है, और असल में हम सब उसी एक इच्छा के अलग अलग रूप हैं, उसी दुख के भागीदार हैं,
तो सच्ची करुणा पैदा होती है।
हाँ, तब दूसरे को दुख देना खुद को दुख देने जैसा लगता है। ये नियमों या उपदेशों पर आधारित नैतिकता नहीं, बल्कि सीधी अनुभूति पर आधारित है। और फिर आता है सबसे सबसे चरम रास्ता, जिसे शोपेनहावर इच्छा का पूर्ण खंडन, डिनायल ऑफ द विल कहते हैं।
हाँ, और जेनावे इसे बहुत सावधानी से समझाते हैं, ये आत्महत्या बिल्कुल नहीं है।
नहीं है।
अच्छा,
नहीं, शोपेनहावर मानते थे कि आत्महत्या भी इच्छा का ही एक जोरदार प्रदर्शन है। व्यक्ति मरना नहीं चाहता, बस दुख से छुटकारा पाना चाहता है।
ओके।
इच्छा का खंडन का मतलब है जीवन जीने की इच्छा, उसकी खुशियों और आकर्षणों से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना। ये एक तरह से इच्छा का अपने ही खिलाफ हो जाना है,
तपस्या जैसा।
हाँ, ये तपस्या एसेटिसिज्म के जरिए हासिल होता है, जैसे स्वैच्छिक गरीबी, ब्रह्मचर्य, दुनिया से पूरी तरह अनासक्ति। ये रास्ता बहुत कठिन है, शायद कुछ संतों या तपस्वियों के लिए ही संभव हो।
बौद्ध निर्वाण जैसा कुछ?
हाँ, काफी कुछ वैसा ही, एक गहरी स्थायी शांति जहां इच्छा की कोई लहर नहीं उठती।
तो इन सब बातों से मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? जेनावे क्या मुख्य बातें उभारते हैं? पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला, बुद्धि पर इच्छा की प्रधानता।
हाँ,
हम सोचते हैं कि हम कितने तर्कशील हैं, पर शोपेनहावर कहते हैं कि हमारी बुद्धि असल में हमारी अंधी इच्छा की वकील है। हम पहले तय कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, फिर उसके लिए तर्क ढूंढते हैं।
सोचिए, क्या ये आज भी सच नहीं लगता? कितनी बार होता है ऐसा?
हाँ बिल्कुल, ये फ्रॉयड के अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड के विचारों से पहले की बात है, पर कितनी मिलती जुलती है। ये हमें अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने को मजबूर करता है।
और दूसरा बड़ा संदेश,
व्यक्तित्व का भ्रम। ये विचार कि हमारा अलग होना एक भ्रम है और मूल रूप से हम सब जुड़े हुए हैं,
ये करुणा का आधार बनता है। अगर सब एक हैं तो दूसरे का दुख मेरा दुख है।
सही। तीसरा, दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये सुनने में शायद थोड़ा निराशाजनक लगे।
हाँ, लगता तो है।
लेकिन जेनावे दिखाते हैं कि शोपेनहावर इसे एक तथ्य की तरह देखते हैं। इसे स्वीकार करने से शायद हम झूठी उम्मीदों से बच सकते हैं और जीवन की मुश्किलों का सामना ज्यादा यथार्थवादी ढंग से कर सकते हैं।
चौथा, कला। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक तरह की मुक्ति है, भले ही वो कुछ देर की हो।
हाँ, जब हम कला या प्रकृति में डूबते हैं तो हम अपनी चिंताओं और इच्छाओं से थोड़ी देर के लिए आजाद हो जाते हैं। ये हमें कला को ज्यादा गहराई से सराहने का कारण देता है।
और पांचवा, नैतिकता का आधार। नियमों में नहीं बल्कि करुणा में, दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता ही हमें नैतिक बनाती है।
बिल्कुल, ये हमें ज्यादा सहनशील और दयालु बनने की प्रेरणा दे सकता है।
और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शोपेनहावर उन पहले पश्चिमी दार्शनिकों में से थे जिन्होंने भारतीय दर्शन, हिंदू और बौद्ध को बहुत गंभीरता से लिया।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माया का पर्दा, दुख से मुक्ति, इच्छा का त्याग, ये सब उनके दर्शन का अभिन्न हिस्सा है। ये दिखाता है कि ज्ञान किसी एक संस्कृति की बपौती नहीं है।
जेनावे शोपेनहावर के किसी कैसे कथन भी सामने लाते हैं जो उनके विचारों का निचोड़ हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे उनकी किताब की पहली ही पंक्ति, दुनिया मेरा प्रतिनिधित्व है।
द वर्ल्ड इज माई रिप्रेजेंटेशन।
इसका गहरा मतलब है कि दुनिया वैसी ही है जैसा मेरा मन उसे दिखाता है। अनुभव के बिना दुनिया क्या है ये हम नहीं जान सकते।
और दुख पर उनका ये कहना कितना सीधा और सटीक है, सभी इच्छाएं कमी, अभाव और इस तरह दुख से उत्पन्न होती हैं।
All willing springs from lack, from deficiency, and thus from suffering.
मतलब जब तक हम कुछ चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास वो नहीं है, और यही कमी दुख का कारण है, सीधा हिसाब।
और नैतिकता पर ये सूत्र, करुणा ही समस्त नैतिकता का आधार है।
Compassion is the basis of all morality.
ये हमें याद दिलाता है कि नैतिक होने के लिए नियमों की लिस्ट रटने से ज्यादा जरूरी है दूसरों की पीड़ा को महसूस करना। संगीत प्रेमियों के लिए जरूर खास होगा, संगीत इच्छा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है।
शोपेनहावर मानते थे कि संगीत सीधे हमारी भावनाओं, हमारे अंदरूनी इच्छा के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है, इसीलिए वो इतना असरदार होता है।
हाँ, और स्वतंत्रता पर यह विरोधाभास, ये तो सोचने पर मजबूर करता है। एक आदमी वो कर सकता है जो वो चाहता है, लेकिन वह ये नहीं चाह सकता कि वह क्या चाहता है।
मतलब हम अपनी इच्छाओं पर अमल तो कर सकते हैं अगर कोई रोके नहीं, पर हमारी इच्छाएं आती कहां से हैं? हम क्या चाहें और क्या ना चाहें, इस पर हमारा वश नहीं है।
हाँ, इच्छाएं तो बस हम में उठती हैं, हमारा उन पे कंट्रोल नहीं है कि कौन सी इच्छा उठे।
तो सवाल ये है कि इन गहरे, कभी कभी परेशान करने वाले विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है?
हाँ, प्रैक्टिकल क्या है? जेनावे के विश्लेषण से कुछ व्यावहारिक बातें निकलती हैं। पहले, खुद को बेहतर समझना,
सेल्फ अवेयरनेस
है। हमें खुद के प्रति थोड़ा ज्यादा ईमानदार और शायद कम सख्त बना सकता है।
दूसरी बात, हमारे रिश्ते। अगर हम सच में यह समझें कि सामने वाला भी उसी दुख और संघर्ष से गुजर रहा है जिससे हम,
तो शायद हम ज्यादा सहानुभूति रख पाएंगे। मतभेदों को निजी हमले की तरह देखने के बजाय हम उन्हें साझा मानवीय कमजोरी की तरह देख सकते हैं।
इससे माफ करना और सहनशील होना शायद थोड़ा आसान हो जाए।
बिल्कुल। तीसरी, कला और प्रकृति की गहरी सराहना।
हाँ, ये तो है।
शोपेनहावर हमें याद दिलाते हैं कि संगीत सुनना, कोई पेंटिंग देखना या पहाड़ों में घूमना सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये हमारी आत्मा के लिए जरूरी है। ये हमें इच्छाओं के बोझ से थोड़ी देर के लिए आजादी दिलाते हैं।
चौथा, मानसिक मजबूती, रेजिलियंस। जीवन में दुख आएगा ही, इसे स्वीकार कर लेना हमें ज्यादा लचीला बना सकता है।
ये हमें झूठी सकारात्मकता के दबाव से बचाता है। जब हम ये मान लेते हैं कि मुश्किलें आएंगी तो हम उनसे निपटने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। शायद यहीं से स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और सचेतनता, माइंडफुलनेस का रास्ता खुलता है।
और पांचवां, जो शायद सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठाना।
हाँ, क्या पैसा, शोहरत, ताकत की अंतहीन दौड़ सच में स्थायी खुशी दे सकती है? शोपेनहावर हमें रुककर सोचने को कहते हैं।
शायद सच्ची शांति रिश्तों में, कला में या बस अपने अंदर की इच्छाओं को समझने में ज्यादा मिले।
तो जनावे के जरिए शोपेनहावर को समझने से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है, आपके लिए क्या है?
मेरे लिए तो ये है कि जीवन की मुश्किलों और दुख का ईमानदारी से सामना करना जरूरी नहीं कि हमें निराशावादी ही बनाए। यह हमें ज्यादा समझदार, ज्यादा करुणामय बना सकता है। शोपेनहावर जैसा जनावे दिखाते हैं, वो डॉक्टर हैं जो बीमारी का सही निदान करते हैं ताकि इलाज खोजा जा सके। कड़वी दवाई देते हैं पर शायद जरूरी है।
मैं सहमत हूँ, खुशी शायद इच्छाओं को पूरा करने में उतनी नहीं है जितनी इच्छाओं की पकड़ को समझने और उससे थोड़ी दूरी बनाने में है, चाहे वो कला के जरिए कुछ पलों के लिए हो या करुणा और त्याग के जरिए ज्यादा स्थायी रूप से। जेना वे शोपेनहावर को सिर्फ निराशा का दूत नहीं बल्कि मानवीय स्थिति का एक गहरा और हमदर्द विश्लेषक बताते हैं।
तो अंत में ये सवाल हमारे साथ रह जाता है, क्या जीवन का असली लक्ष्य इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाना है जैसा कि तपस्वी करते हैं, या फिर
हम अपनी इच्छाओं की असलियत को समझते हुए, कला में सुकून ढूंढते हुए, दूसरों के प्रति करुणा रखते हुए दुख के साथ ही जीना सीख सकते हैं?
शायद यही संतुलन खोजना हमारे लिए ज्यादा व्यावहारिक रास्ता है। इस पर विचार करना शोपेनहावर की इस ज्ञान गोष्ठी का एक अहम हिस्सा हो सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।